ओम शांति। एक बहुत ही सुंदर स्वस्थ जीवन शैली सीखने के लिए, खुशहाली जीवन सीखने के लिए, उस तरीका को सीखने के लिए जिससे हम रहें डायबिटीज से दूर, मधुमेह से दूर, ऐसी एक शिक्षा, ऐसी एक ट्रेनिंग लेने के लिए आज हम सब फिर से एकत्रित हो गए हैं। आज हम इस देव भूमि, प्रभु की कर्म भूमि में ऐसे एक महान तपस्वी कुमार से मिलने वाले हैं जो कि आजीवन ब्रह्मचारी हैं, जो जिन्होंने रात को 2 बजे से जागकर राजयोग का अभ्यास करते हैं सुबह तक, और दिन भर मरीजों की सेवा में व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे एक महान हस्ती हम सबके समक्ष हैं जो कि ये सदा करते रहते हैं ऐसे इन्वेंशंस, ये सदा करते रहते हैं ऐसे इन्वेंशंस ताकि आपको मिले डायबिटीज से प्रिवेंशन, डायबिटिक प्रिवेंशन। तो आइए, ऐसे महान हस्ती का मैं थोड़ा आपसे परिचय कराना चाहती हूँ। इनका बायोडाटा, इनकी परिचय में 2 शब्द। भाई साहब का नाम है ब्रह्मा कुमार डॉक्टर श्रीमंत कुमार साहू। आप ऑलराउंडर हैं, सिर्फ मेडिकल साइंस में नहीं, इनको आप ऐसे साधारण देखते हैं, इनकी व्यक्तित्व जीवन में वो बहुत साधारण रहते हैं, लेकिन ऑलराउंडर हैं। इन्होंने MBBS DA MD डिप्लोमा इन डायबिटोलॉजी, CCDM CCGDM SCDMC किया है। कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू राजस्थान इंडिया में। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं भाई साहब, आप होलिस्टिक अप्रोच टू डायबिटीज प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू में। आपने MBBS संबलपुर यूनिवर्सिटी ओडिशा में किया और BA बॉम्बे यूनिवर्सिटी में प्राप्त किया। मास्टर एंड डिप्लोमा इन डायबिटोलॉजी एनामले यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में किया। गवर्नमेंट जॉब भी करते थे आप एक असिस्टेंट सर्जन के रूप में 1985 से 1991 तक गवर्नमेंट जॉब किया। अभी आप फुल टाइम डेडिकेटेड सर्विस करते हैं ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सिंस 1991। ब्रह्मा कुमारी का एक आप रेगुलर स्टूडेंट हैं 1986 से। स्पेशल इंटरेस्ट आपका है ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ कैंप्स फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर डायबिटीज एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस एंड हैज कंडक्टेड मोर देन 250 प्रोग्राम्स ऑल ओवर इंडिया एंड अबोर्ड। डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम इज रेगुलरली ब्रॉडकास्टेड इन पीस ऑफ माइंड TV चैनल एंड मिलियंस ऑफ पीपुल टेक द बेनिफिट्स ऑल ओवर द इंडिया। स्पिरिचुअल टीचर ऑफ राजयोगा मेडिटेशन भी हैं आप। आपको हम सब इस प्रांगण में, इस माहौल में पाए हैं, हम सब धन्य हैं, और हम सब करतल ध्वनि से भाई साहब की स्वागत करेंगे और उनकी मुखारविंद से, उनकी मुख कमल से आज की ट्रेनिंग की कार्यक्रम सुनेंगे। आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार श्रीमंत भाई जी।
ओम शांति। थैंक यू सिस्टर सो मच। आई एम प्रिविलेज्ड, ऑनर्ड। आज मुझे बेहद खुशी है क्योंकि हर बार मैं ऐसे लोगों को एड्रेस करता हूं, अक्सर करके देखता हूं, जिनके जीवन में खुशी नहीं, अनेक प्रकार की बीमारियों के घेरे में जीवन बिल्कुल नीरस है। परंतु आज मैं ऐसे महान हस्तियों को एड्रेस कर रहा हूं जो सबको खुशी प्रदान करते हैं, जिसके जीवन में खुशी से भरपूर करने वाले ऐसे महान कलाकारों को मैं देख रहा हूं सन्मुख, तो इसलिए बेहद खुशी है। आज का जो प्रोग्राम मैं कहता हूं, लेट अस रिजुविनेट आवर लाइफ विथ ब्रह्मा कुमारीज। किसी भी पेड़ पौधा को आप देखे होंगे, जब उसमें पानी नहीं डाला जाता है, धूप में नहीं रखा जाता है, कोई खाद नहीं दिया जाता है, क्या होता है? थोड़े समय के बाद मुरझा जाता है। ठीक इसी तरह आज अगर मनुष्य जीवन को देखा जाए, मनुष्य जीवन में भी लोगों के जीवन में ना खुशी है ना हर्षोल्लास है ना आनंद है, सभी का जीवन जैसे कि निरस है, मुरझाया हुआ है। जैसे एक मुरझा हुआ पौधा को पानी फिर देते हैं, धूप में रखते हैं, फिर से वो पल्लवित हो उठता है, फिर से पत्र पुष्प सब आने लगते हैं, सुरभित करने लगता है। ठीक इसी तरह आज मनुष्य जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान रूपी जल, ईश्वरीय शक्ति रूपी प्रकाश देकर हमारी ब्रह्मा कुमारी बहने मानव जीवन को पुनः सुगंधित कर रहे हैं, सुरभित कर रहे हैं, पल्लवित कर रहे हैं, संजीवित कर रहे हैं। सो लेट अस रिजुविनेट आवर लाइफ विथ ब्रह्मा कुमारीज, देन ओनली यू कैन रिजुविनेट अदर्स। आपके लिए एक सुंदर सौगात लेके आया हूं, इट इज ए प्रेजेंटेशन फॉर ऑल ऑफ यू। बहन जी ने मेरा परिचय दे दिया, मैं एक डायबिटीज स्पेशलिस्ट हूं, साथ साथ होलिस्टिक केयर फिजिशियन हूं, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट अबू जो ब्रह्मा कुमारीज का ट्रस्ट हॉस्पिटल है, पिछले 25 साल से वहां सेवारत हूं। आज का विषय वस्तु हम चर्चा करेंगे एक सुंदर टॉपिक, लाइफ ए फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस। वास्तव में जीवन क्या है, हम सभी ये संसार में क्यों आए हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। एक मशीन की तरह सवेरे से लेकर रात तक काम करते रहो और बहुत कुछ चीजें इकट्ठे करके एक दिन संसार छोड़ के चले जाओ, दिस इज द पर्पज ऑफ लाइफ? नो। जीवन वास्तव में सदियों से अगर देखा जाए, खाली मनुष्य नहीं, आप देखेंगे पशु पंछी भी सभी जीवन में आनंद चाहते हैं, खुशियां मनाना चाहते हैं। बहुत सारे पशु पंछी आप देखोगे वो भी मस्ती करते हैं, खुशियां मनाते हैं। अब मानव जीवन में अगर खुशी नहीं, आनंद नहीं, उत्साह नहीं, तो किस प्रकार का जीवन है? क्या हम मशीन है? नहीं नहीं, जीवन में तो सदा के लिए आनंद उत्साह उल्लास होना चाहिए, परंतु आज दुनिया में हम देख रहे हैं लोग कभी कभी उत्सव मनाते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं ताकि थोड़ा सा उस समय खुशी में नाचें, थोड़ा आनंद लें, फिर वही मैकेनिकल रूटीन लाइफ। तो जीवन क्या कभी कभी उत्सव मनाने के लिए है? नहीं नहीं, जीवन तो सदा के लिए भरपूर उत्सव मनाने के लिए है। इस संसार में हम आए हैं जीवन का पूर्ण उपभोग करने के लिए, आनंद लेने के लिए, इसका मजा लेने के लिए। तो जीवन वास्तव में एक खुशियों भरा महोत्सव है, खुशियों भरा महोत्सव है, कभी कभी का नहीं है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि खुशी क्या चीज है, क्योंकि इसकी परिभाषा हर एक के लिए अलग अलग है। कोई खुशी के लिए कहीं वाटर पार्क में जाता है, कहीं कोई रेस्टोरेंट में जाता है, मनपसंद का भोजन खाता है, वाह मजा आ गया, कोई अच्छा ड्रेस खरीद लेता है, उसको खुशी हो जाती है। ये सब चीजें जो दुनिया में हम खुशी ढूंढते हैं, वास्तव में ये तो क्षणिक है, अल्पकाल की है। वास्तव में खुशी क्या चीज है? हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ये हमारे एक मानसिक स्थिति है। खुशी वास्तव में विनाशी चीजों में नहीं है। एक उदाहरण के रूप में मैं एक बताता हूं। मान लीजिए अभी आपको बहुत एक सुंदर स्वीट आपको खिलाऊंगा, आप कहेंगे डॉक्टर साहब बहुत मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा, आप खुश हो गए। कल वही स्वीट आके फिर से खिलाऊंगा, आप स्वीकार कर लेंगे क्योंकि मैं दे रहा हूं, परसों भी वही स्वीट दूंगा, रोज एक एक देता जाऊंगा, दो चार दिन के बाद क्या होगा, क्या होगा? आपको खुशी मिलेगी? आप उब जाएंगे, कहेंगे बस हो गया डॉक्टर साहब और नहीं लेना है मुझे। तो खुशी मिठाई में है कि मन में है? अगर मिठाई में खुशी है, जैसे कोई नमकीन चीज रोज खाओ, रोज आपको नमकीन लगेगा, नमक लगेगा, इस प्रकार कोई मीठी चीज खाएं, रोज खाएं, जब भी खाएंगे मिठास का अनुभव करेंगे। अगर मिठाई में खुशी है तो रोज खाने से खुशी होनी चाहिए, लेकिन नहीं। इसी प्रकार मान लीजिए आपको एक बहुत सुंदर चुटकुला सुनाता हूं, आप अभी हंस हंस के एकदम पूरा लोटपोट हो गए, वही फिर एक घंटे के बाद सुनाओ, फिर कल भी सुनाओ, परसों भी सुनाओ, कहेंगे कि पागल हो गए क्या। तो खुशी बाहर चीज में कहीं नहीं है, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, हमारी मानसिक एक स्थिति है, इन व्हिच वन फील्स गुड, कंफर्टेबल, कंटेंटेड एंड लुक्स चीयरफुल। तो एक मानसिक स्थिति है, ऐसी स्थिति है जिसमें हम संतुष्ट अनुभव करते हैं, खुश अनुभव करते हैं और चेहरा हमारा खिला हुआ नजर आता है, उसको हम हैप्पीनेस कहते हैं, है ना। नहीं, हैप्पीनेस इज एन एक्सपीरियंस व्हेन समवन एंजॉयज। तो जीवन में जब आप एंजॉय करते हो तभी जीवन में खुशी होती है। इसलिए हम भारतवर्ष में, विदेश में भी, भारत में जितना त्यौहार होता है, उत्सव होता है, शायद और किसी देश में होता होगा। ऐसा एक समय था जब हमारे देश में सतयुग त्रेतायुग था, जिसको स्वर्ग कहा जाता था, उस समय तो रोज खुशियों भरा जीवन, रोज महोत्सव, रोज आनंद उत्सव। लेकिन धीरे 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 द्वापर युग जब आया, कलयुग, सतयुग त्रेतायुग आया, द्वापर युग से वी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। और आज कलयुग में क्या हाल हो गया है आप देख लो। तो कहने का मतलब है, जब हम एंजॉय करते हैं तो हमें खुशी की प्राप्ति होती है, एंड हैप्पीनेस इज द ट्रू नेचर ऑफ द सेल्फ। वास्तव में हम सभी का निजी गुण है खुश रहना। किसी भी व्यक्ति को दुखी होना अच्छा नहीं लगता है, सदा खुश रहो कोई प्रॉब्लम नहीं, सदा दुखी होकर कोई रहना चाहेगा नहीं। तो खुशी हमारा निजी गुण है, निजी गुण है। एक बहुत सुंदर एक प्रश्न पूछा किसी एक मूर्तिकार को, किसी व्यक्ति कहता कि तुम इतना सुंदर मूर्ति कैसे बनाते हो। उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया, मैं तो कुछ नहीं किया, इसमें एक पत्थर का जो अनावश्यक हिस्सा है वो निकाल दिया, बाकी मैं कुछ किया नहीं, उसमें जो अननेसेसरी पोर्शन था वो निकाल दिया, तो ऐसा हो गया। कहने का मतलब है, योर हैप्पीनेस इज हिडन विद इन यू, आपके अंदर ही खुशी है, खाली उसको हमको डिस्कवर करना पड़ेगा। जैसे एक पत्थर में मूर्ति है ऑलरेडी, उसको जो बताया कि उसके अननेसेसरी एस्पेक्ट्स को मैं निकाल दिया, पार्ट्स को निकाल दिया, तो इतनी सुंदर मूर्ति हो गई। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत कुछ बातें हैं जो हम इकट्ठा करके रखे हैं, जिससे हमें खुशी अनुभूति नहीं होती, वो बातों को हम निकाल देंगे तो जीवन में सदा खुश अनुभव कर सकते हैं। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल लॉजिक। महात्मा गांधी, जिसको हम नेशनल फादर कहते हैं, वो कहते हैं, हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मोनी। जब कोई व्यक्ति जो सोचता है, जो बोलता है, जो करता है, ये तीनों ही एक है, तभी जीवन में वो खुशी का अनुभव कर सकता है। आजकल के मनुष्य कैसे हैं आप जानते हैं, अधिकतर लोग वो सोचते क्या है, बोलते क्या है, करते क्या है, बहुत डिफिकल्ट टू जज, वेरी डिफिकल्ट। तो जब हम एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, हमारे अंदर बाहर एकदम बिल्कुल एक होता है, तो ही जीवन में छल कपट ये सब चीजें, मिलावट, इससे खुशी नहीं हो सकती जीवन में। तो जीवन में जो सच्चाई सफाई है, अंदर जो बाहर जो जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, करते हैं, सब समान है, तो ही खुशी हो सकती है। तो समझ में आया सभी को, व्हाट इज हैप्पीनेस नाउ, व्हाट इज फेस्टिवल, व्हाट इज फेस्टिवल। फेस्टिवल जिसको हम उत्सव कहते हैं, इट इज एन ओकेजन व्हेन पीपल सेलिब्रेट टू एंजॉय और एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। सारे वर्ल्ड में कोई ना कोई, जैसे अभी गणपति का उत्सव चल रहा है, अभी थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे फिर दुर्गा पूजा आ जाएगा, फिर और कोई फेस्टिवल आ जाएगा, कभी होली तो कभी दिवाली तो कभी और क्या त्यौहार, और सारी दुनिया में लोग एक ओकेजन ढूंढते हैं जिस ओकेजन में लोग गेट टुगेदर करते हैं और वहां खुशियां मनाते हैं, उसको हम फेस्टिवल कहते हैं। अगर जीवन में सदा खुशी है सबके जीवन में, तो फेस्टिवल बनाने की जरूरत ही नहीं है। जीवन में आप देखना, विदेश जाइए देखिए कैसा होता है, 5 दिन ऐसा काम करते हैं कि गधे जैसा जीवन, फिर 2 दिन छुट्टियां मनाने के लिए, खुशियां मनाने के लिए सीधा भाग जाएंगे, एकदम जाके कोई सी बीच में जाके सुदबुद्ध नहीं, फिर आएंगे फिर 5 दिन एकदम मैकेनिकल लाइफ। तो जीवन में अगर कोई सदा खुशी मनाता है, अनुभव करता है, तो उसको फेस्टिवल की आवश्यकता ही नहीं है। यहां ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हमारा रोज फेस्टिवल है, यहां रोज महोत्सव है, हम रोज खुशियां मनाते हैं, एक ऑकेजन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो जीवन में सदा खुश कैसे रहें, इस विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। इसलिए आपको बताया, लेट अस रिजुविनेट आवर लाइफ विद ब्रह्मा कुमारी। जीवन में सदा ही कैसे खुशियां मनाए, सदा सुरभित सुगंधित पल्लवित होकर रहे, सदा दूसरों को खुशबू दे, सदा संजीवित होकर रहे, इसलिए यहां सिखाया जाता है। वास्तव में जीवन में व्हाट इज द पर्पज ऑफ माय लाइफ, हमें अपने आप को पूछने की आवश्यकता है, मैं किस लिए संसार में आया हूं। आज संसार में लोग दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां दौड़ रहे हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, क्या साथ में लेके जाएंगे, है किसी को कुछ सुदूध ही नहीं है, दौड़ रहे हैं खाली। परंतु हमें समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। लाइफ इज, समबडी हैज टोल्ड, किसने कहा है, लाइफ इज फ्रॉम बी टू डी। क्या मतलब? यस, इट इज, लाइफ इज फ्रॉम बर्थ टू डेथ, इट इज ए जर्नी, डेफिनेटली एक यात्रा है, एक लंबा सफर है, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक लंबा सफर है। और व्हाट इज इन बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में क्या है, सी है डेफिनेटली, ओके राइट, बट व्हाट इज सी, सी इज चॉइस, व्हाट इज योर चॉइस। आपके जीवन में सदा दुखी होकर रहना है कि खुश रहना है, व्हाट इज योर चॉइस। सभी क्या चाहते हैं जीवन में, सदा खुश रहने के लिए, सो हैप्पीनेस इज ए चॉइस। आप अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो, आपको कोई दुखी कर ही नहीं सकता है। आप नहीं चाहते हो तो फिर तो सदा जीवन में दुखी होकर रहेंगे। तो जीवन का हमारा चॉइस होना चाहिए कि जीवन में सदा खुश रहे, सदा आनंदित रहे। हमारे पास कितने भी धन संपत्ति, महल, माड़ी, गाड़ी, मोटर, डिग्रियां, कुछ भी हो, अगर जीवन खुश नहीं, तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, व्हाट इज द यूज ऑफ लाइफ। मैं बहुत बड़े बड़े सेठ लोगों के साथ, करोड़पति लोगों के साथ ट्रैवल करके देखा हूं, चेहरा में ऐसे चेहरा जैसे कि कोई चमन्नी कहीं खो गया। क्या फायदा है, सब बैंक में पड़ा रहता है, क्या फायदा है। तो जीवन में खुशी अनुभव होना चाहिए। सो इन द जर्नी ऑफ लाइफ, जीवन दोस्तों एक यात्रा है। इस जीवन रूपी यात्रा में देयर विल बी सनशाइन एंड रेन, कभी धूप तो कभी छांव, देयर विल बी प्लेजर एंड पेन, कभी सुख तो कभी दुख, देयर विल बी लॉस एंड गेन, कभी लाभ तो कभी हानि। बट डोंट फॉरगेट टू स्माइल अगेन एंड अगेन। सो इन द जर्नी ऑफ लाइफ देयर विल बी सनशाइन एंड रेन, देयर विल बी प्लेजर एंड पेन, देयर विल बी लॉस एंड गेन, बट डोंट फॉरगेट टू स्माइल अगेन एंड अगेन। तो जीवन में सदा ही खुशनुमा चेहरा हो, खिला हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है। आप 5 सेकंड के लिए भी मुस्कुराते हो, 5 सेकंड के लिए भी मुस्कुराते हो, देखो आपका फोटो कितना अच्छा हो जाता है, जो भी देखता है वो खुश हो जाता है। अगर जीवन में सदा मुस्कुराते रहेंगे तो क्या होगा। देखिए, हमारे देश में जब लक्ष्मी, नारायण, राधे, कृष्ण, राम, सीता आदि जो हमारे पूर्वज होके गए हैं, जिनको हम कुल देव कुल देवी कहते हैं, हमारे ही पूर्वज थे ना, कहीं भी उनके चित्र देख लो, कहीं भी मूर्ति देख लो, कैसा चेहरा, सदा खिला हुआ चेहरा। हमारा चेहरा कैसा है। आज कोई मुस्कुराता है तो लोग कहते हैं क्या हुआ भाई, क्या हुआ, जैसे कोई गुनाह करके आया कहीं। तो सदा जीवन में खुश रहना चाहिए। सो एक बहुत और एक सुंदर कहावत है, लिविंग इन फेवरेबल एंड अनफेवरेबल सिचुएशन इज कॉल्ड पार्ट ऑफ लिविंग। ये जीवन में दोस्तों कोई नहीं कह सकता है कि दिन नहीं होगा, रात नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सदा ही सब कुछ ठीक ठाक स्मूथली चलता रहेगा, कोई नहीं कह सकता है। ये संसार एक कंट्रास्ट की दुनिया है, इसमें दिन भी है तो रात भी है, सुख भी है तो दुख भी है, धूप भी है तो छांव भी है, सब कुछ है। तो जीवन में सदा ही बेड ऑफ रोजेस में आप चलते रहोगे, ऐसा नहीं है। तो ये तो होना ही है, लिविंग इन फेवरेबल एंड अनफेवरेबल सिचुएशन इज कॉल्ड पार्ट ऑफ लिविंग, बट स्माइलिंग इन ऑल दोज सिचुएशन इज कॉल्ड आर्ट ऑफ लिविंग। हर परिस्थिति में जो सदा मुस्कुराना जानता है, वास्तव में वो जीवन जीने की कला जानता है। कोई कितना भी सुंदर कला प्रदर्शन करे लेकिन जीवन में वो सदा खुश रहने का कला नहीं सिखाए, बाकी कला क्या मतलब का है। तो जीवन में सबसे श्रेष्ठ कला, किसी को संगीत का कला, किसी को गीत गाने का कला, किसी को नाचने का कला, किसी को क्या कला, बहुत सारी कलाओं से लोग भरपूर है, लेकिन जीवन में अगर खुश रहने का कला, सदा खुश मुस्कुराने का कला जिसको नहीं आया है, मैं कहूंगा बाकी सारे कला ठीक है, वो भी जरूरी है जीवन में, लेकिन अगर आप कोई व्यक्ति सदा के लिए खुश रहना सीख गया, वो जीवन जीने की कला ही सीख गया। तो हु कैन स्माइल, हु कैन स्माइल, आज मुस्कुराते लोग क्यों नहीं है, क्यों नहीं मुस्कुराते, कौन मुस्कुराता है, कौन मुस्कुराता है, जो सदा खुश रहता है वो मुस्कुराएगा। हैप्पीनेस अर्थात खुशी, वो आप कितने पोस्ट पोजीशन वाले हो, कितने धन संपत्ति आपके पास है, उसके आधार से खुशी नहीं होती है। जो सदा खुश रहता है वो मुस्कुराता है, और खुश रहने के लिए आपके धन संपत्ति महल माड़ी डिग्रियां ये सब की आवश्यकता नहीं है। खुशी का सिंपल आधार है आपके मन में क्या सोच चल रहा है, आप जो सोच रहे हो उसी आधार से आपके जीवन की खुशी होगी। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, मन में अच्छे अच्छे विचार आ रहा है, आपको कहीं सम्मानित किया गया था, बहुत अवार्ड मिला था, बहुत कुछ, आप कहीं खूब बढ़िया भोजन खाए थे याद आ रहा है, चेहरा खिला हुआ नजर आया, कई दुख की घटनाएं याद आ रही है, चेहरा एकदम। तो मनुष्य जैसा सोचता है उसी आधार से उसके चेहरा दिखता है। आज दुनिया में लोग दुखी क्यों है, क्यों खुश नहीं है, आप जानते हैं, एक छोटा बच्चा खटिया में देखे होंगे, एक महीना का बच्चा, माताएं देखी होंगी, आसपास में कोई नहीं होगा लेकिन अपने आप मुस्कुराता रहता है, देखे हैं कभी, साइंटिस्ट लोगों ने देखा है, वैज्ञानिक लोगों ने देखा है, एक छोटा बच्चा 24 घंटे में 250 बार मुस्कुराता है, 250 बार। हम लोग कितने बार मुस्कुराते हैं, कितने बार मुस्कुराते हैं, अपने आप को पूछिए थोड़ा। तो जीवन में खुशी क्यों नहीं है, व्हाट इज द कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस, कारण बताया, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। वही बहन देखो, एक साइड में कैसे दिख रही, दूसरी साइड में कैसे दिख रही, क्यों ऐसा, उसके मन में क्या सोच विचार चल रहा है उसी के आधार से ही। अब प्रश्न उठता है, क्या एक डेड बॉडी कभी सोच सकता है, सोच सकता है, नो नो, अच्छा तो नेक्स्ट प्रश्न है, देन हु इज थिंकिंग, कौन सोच रहा है, कौन सोच रहा है। कई लोग कहते हैं हमारा ब्रेन सोचता है, नहीं नहीं, ये ब्रेन तो एक फिजिकल ऑर्गन है, एक कंप्यूटर जैसा ही है, एक कंप्यूटर अपने आप नहीं चलता है, उसको चलाना पड़ता है, तो ब्रेन भी अपने आप नहीं चल सकता है, ब्रेन को चलाने वाला कोई चाहिए। कौन चलाता है ब्रेन को, देखिए इतना छोटा सा बच्चा, देखो उसको उसको पेंट पहनना भी नहीं आया है, फिर भी कंप्यूटर चला रहा है, तो कंप्यूटर कितना करोड़ों रुपए का भी खरीद के ले आओ, अपने आप नहीं चल सकता है, चलाना चाहिए। तो इसी प्रकार हु इज द ऑपरेटर, कभी आपने सोचा है कि मैं कौन हूं, दुनिया में कोई नहीं सोचते हैं कि मैं कौन हूं, सभी जानते हैं ना, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, टीचर हूं, मैं कलाकार हूं, सभी जानते हैं अपने आप, नहीं, वास्तव में क्या हम यही हैं, आप कहेंगे ये मैं कहा हूं, ये तो एक एक्टर है, वास्तव में व्हाट इज द रियलिटी ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, जस्ट लुक एट, देख लीजिए, देख लीजिए, देखा ये मनुष्य शरीर की असलियत क्या है, ये तो एक पांच तत्व का बना हुआ पुतला है, एक हड्डी मांस का पुतला ही है ये शरीर, एक हड्डी मांस का पुतला, जब इसमें एक आत्मा प्रवेश कर जाती है, एक चेतना शक्ति, एक कॉन्शस एंटिटी जब प्रवेश कर जाती है, हम सभी मनुष्यात्मा कहलाते हैं। ह्यूमस प्लस बींग इज ह्यूमन बींग, ह्यूमस मना मिट्टी सॉयल, बींग मीन्स आत्मा, तो ये शरीर एक मिट्टी का पुतला ही है, इसमें जब एक आत्मा प्रवेश कर जाती है, आत्मा ही वास्तव में जब तक है सब कुछ है, आत्मा जैसे निकल जाती है इस शरीर का कोई मतलब नहीं, जस्ट लुक एट दिस, जब तक आत्मा है हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आत्मा निकल गई, देखिए एक सेकंड में क्या से क्या हो जाता है, लोग फिर देखते ही एकदम डरना शुरू डर लगेगा, भूत कहेंगे, छूने से जाके ना आएंगे, कहते जला दो, बदबू आना शुरू हो जाएगा। तो कौन है हम सभी, कौन है, कौन है? एक एक आत्मा है। ये शरीर तो एक मीडियम टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ, हम इस शरीर द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। हम एक एक आत्मा है और आत्मा में तीन अभिव्यक्तियां हैं, तीन फैकल्टीज है, जिसको हम मन, बुद्धि और संस्कार कहते हैं। ये कोई अलग अलग चीज नहीं है। जैसे आप मान लीजिए किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आप ऑफिसर हो, कोई भी देखेगा तो आपको कहेगा ये ऑफिसर है। आप किसी कहीं एक कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सुंदर गीत गा रहे हो, आपको जो देखेगा क्या कहेंगे, एक बहुत सुंदर गायक है। आप किसी फुटबॉल फील्ड में बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहे हो, जो भी देखेगा क्या कहेगा, एक खिलाड़ी है। तो आप वही, इसी प्रकार आत्मा वही है, लेकिन आत्मा जब सोचती है उसको मन कह दिया गया है, आत्मा जब डिसीजन लेती है, राइट है, रॉन्ग है, अच्छा है, बुरा है, इंटेलेक्ट व बुद्धि कह दिया गया है। काम करते करते जो आदत हो जाती है उसको हम संस्कार कह देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमारा मन क्या है। लोग कहते हैं ब्रेन और मन ये दोनों एक है। नहीं नहीं, वास्तव में ब्रेन तो एक हार्डवेयर है और आत्मा व मन ये तो सॉफ्टवेयर है। इसमें ये फिजिकल है, आप ब्रेन को पकड़ सकते हो, देख सकते हो, आत्मा को देख नहीं सकते हो, सो सटल, सो अति सूक्ष्म है। और इसमें 100 बिलियन सब सेल्स है, जीवकोश है। इसमें एक दिन में हम 50,000 लगभग थॉट्स क्रिएट करते हैं। हमारे आत्मा से, मन से हम इतने क्रिएट करते हैं। इसमें हायर ब्रेन, लोअर ब्रेन है, इसमें कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड है। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इसको समझना जरूरी है। तो मन वास्तव में हमारा सोचता है और मन में फीलिंग आती है। जैसे मां चिल्लाती है जोर से तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, तो ये फीलिंग हमारे मन, आत्मा करती है, उसी समय हम मन कह देते हैं। इसी प्रकार हमारे इमोशंस को हम एक्सप्रेस करते हैं मन द्वारा। तो मन एक साधन है जिसके द्वारा हम थॉट्स क्रिएट करते हैं। और सदियों से हम सुनते आए हैं कि मन एक बेलगाम घोड़ा की तरह है। अभी अभी कहां, कभी यहां बैठे बैठे आप कहां कहां घूम के आ सकते हो, बेलगाम घोड़ा की तरह। सारे दिन में 50,000 थॉट्स भले क्रिएट करते हैं, लेकिन चार प्रकार के ही थॉट्स क्रिएट होता है। एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, एक है नेसेसरी, दूसरा है अननेसेसरी। बस चार प्रकार के थॉट्स। और ये चार प्रकार के थॉट्स में से नेसेसरी, अभी मुझे खाना है, अभी मुझे सुना है, अभी मुझे दवाई लेनी है, अभी मुझे वहां जाना है, मार्केटिंग करना है, ये तो जरूरी है जीने के लिए। अननेसेसरी, आप यहां बैठे हो, घर की बातें सोच रहे हो, और क्या सोच रहे हो, पास्ट की बातें सोच रहे हो, जो जरूरी नहीं है। नेगेटिव, जो अपना भी नुकसान, दूसरों का भी नुकसान। पॉजिटिव, जिसमें अपना भी भला, दूसरों का भी भला। ओनली पॉजिटिव थॉट्स में ही हमारी शक्ति जमा होती है, बाकी सारे थॉट्स में हम वी ड्रेन आउट आवर एनर्जी, थकान महसूस करते हैं। तो देखिए आप यहां क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, दो सांड आपस में लड़ रहे हैं। कहां कहां जानते हैं, हमारे दिमाग में। हमेशा दो सांड हमारे दिमाग में झगड़ते रहते हैं। ये दोनों सफेद नहीं है, एक सफेद एक काला, एक सफेद एक काला। तो आप समझ गए होंगे सफेद कौन, पॉजिटिव थॉट्स, और काला कौन, नेगेटिव थॉट। अभी कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, आप जिसको खिलाओगे वो जीतेगा। आप काला सांड को खिलाते रहो, देखता हूं सफेद सांड कैसे जीतेगा। सफेद सांड को खिलाते रहो, देखता हूं काला सांड कैसे जीतेगा। आप जिसको खिलाओगे वो जीतेगा। किसको जिताना है, किसको जिताना है, तो हमें जिताना है पॉजिटिव को। क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स अगर होगा तो हम शक्ति जमा होगी हमारे अंदर। आप देखना, कई लोग 8 घंटा सोने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करते, उठेंगे इस करवट उस करवट, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर उठेंगे, अखबार पढ़ेंगे, फिर सो जाएंगे। और कई तो 2-4 घंटा सोने के बाद भी फ्रेश फील करते हैं। वेरी सिंपल लॉजिक है। देखिए आप यहां बैठे हो, प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, बहुत सुंदर कल्चरल प्रोग्राम देख रहे हो, सब देख रहे हो, आपको कितने घंटे भी बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन मान लीजिए बहुत बोरिंग, बिल्कुल आपको मजा ही नहीं आ रहा है, आप आधे घंटे के बाद कहते थक गया यार मैं तो अभी जाता हूं। कौन से यहां पहाड़ उठा रहे हो जो आप थक गए? तो हमारे मन में किस प्रकार का सोच विचार चलता है उसी आधार से जीवन में खुशी होती है, शक्ति मिलती है, थकान होता है, कमजोरी फील होती है। तो ऑलवेज वी शुड बी पॉजिटिव। जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है हाथ उठाओ, हाथ उठाओ बी पॉजिटिव। वाह वेरी गुड, आप हो ही पॉजिटिव। मैं भी बी पॉजिटिव हूं, आप हो ही पॉजिटिव। तो वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। सवेरे सवेरे उठकर अगर बहुत सुंदर एक सोच मन में चलता है, सारा दिन देखो कैसे खुशियों से भरपूर हो जाता। इसलिए कहते हैं मॉर्निंग सोच द डे, वेल बिगन हाफ डन। कोई कार्य शुरुआत ही अच्छा है तो फिर तो सुंदर होना ही है। और भी बहुत एक सुंदर है कहावत है, अगर आदि भला अंत भला तो मध्य भला हुआ ही पड़ा है। जिसका शुरुआत ही अच्छा है और एंड भी अच्छा है तो बीच का तो अच्छा होना ही है। तो जीवन में उठते ही हमारे मन में बहुत सुंदर विचार कैसे हम संरचना करें सीखने की आवश्यकता है। लोग उठते ही क्या करते हैं, अखबार पढ़ेंगे। अखबार में क्या है, क्या है अखबार में, सारी दुनिया भर की नेगेटिव बातें, कौन किसको मार दिया, कौन किसको मर्डर कर दिया, कौन किसे लूट लिया, कौन से क्या कुछ हो गया, सारी दुनिया भर की नेगेटिव बातें। तो मन कैसे खुश रहेगा? हमारी ब्रह्मा कुमारी शिशिर विश्वविद्यालय में रोज अर्ली मॉर्निंग, हमारे देश में कहावत है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। जो जल्दी सोता है जल्दी उठता है वही स्वास्थ्यवान धनवान और बुद्धिमान बनता है। तो हम अपने कल्चर को भूल गए हैं, आज सब लेट सोते हैं, लेट खाते हैं, लेट उठते हैं और उठते ही अखबार पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, सारे नेगेटिव समाचार, क्या होगा? हमारे घर घर में कल्चर यही नहीं था। उठते ही लोग बहुत सुंदर सुंदर भजन बजाते थे, घर का माहौल में धूप लगाते थे, अगरबत्ती लगाते थे, घर का माहौल को एकदम पॉजिटिवली चार्ज कर देते थे। आज भी हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, आप कहीं भी जाओ सारे वर्ल्ड में, 3:30 बजे गीत बजता है। आप अनुभव किए होंगे इधर 3:30 बजे गीत बजता है, अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडले जागो, प्रभु मिलन की यही बेला है मेरे लाडले जागो। इतना सुंदर सुंदर गीत बजता है, दिल एकदम गदगद होता है, मन एकदम आनंद विभोर हो जाता है। तो शुरुआत ही अच्छा है तो सारा दिन तो अच्छा होना ही है। ए ग्रेट सोल इज वन हुज थॉट्स आर ग्रेट। महान व्यक्ति वो है जो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा मोटा मोटा होगा, वही महान है क्या? नहीं नहीं, महात्मा कहने का मतलब नहीं कि हमसे 2 फुट हाइट ज्यादा है। महान आत्मा वो है जिसके सोच महान है। जिसका सोच महान होगा उसका बोल भी महान होगा, कर्म भी महान होगा, क्योंकि हमारा सोच ही वास्तव में फाउंडेशन है। सो थॉट्स आर प्रेशियस, डोंट नेवर वेस्ट देम। हीरे मोती इससे भी बहुत मूल्यवान हमारे थॉट्स है, हमारी सोच बहुत ही मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है, इसको हमें खोना नहीं चाहिए। हमारा थॉट्स कैसे सदा ही पॉजिटिव क्रिएट करें, सकारात्मक विचार, शुद्ध विचार, समर्थ विचार कैसे जीवन में सदा मन में आए, वो हमें सीखने की आवश्यकता है। वो कला जो सीख गया वास्तव में वो जीवन जीने की कला सीख गया, वो सदा मुस्कुराता रहेगा, रोज उसके लिए फेस्टिवल है, अलग फेस्टिवल जाने की जरूरत नहीं है। लोग एक दिन होली करेंगे दूसरे दिन भूल जाएंगे फिर ज्यों को त्यों, नहीं। सो माइंड योर थॉट्स सिंस दे स्प्रेड ऑल अराउंड यू लाइक ए लाइट हाउस। जैसे एक लाइट हाउस आप देखे होंगे समुद्र के किनारे में, दूर दूर तक रोशनी देकर भटके हुए जो पथहीन जहाज को किनारा दिखाता है, ठीक इसी तरह जो व्यक्ति मन में अच्छे विचार एक लाइट हाउस की तरह स्प्रेड करता है, वो बहुत सारे अशांत दुखी नीरस आत्माओं को राह दिखा सकता है। हम जो भी हम मन में क्रिएट करते हैं, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमारे चारों ओर एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, स्प्रेड करता है। आप देखे होंगे किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां जो भी पहुंचता है उसके मन में अच्छे विचार आता है। कोई चर्च में जाता है कि मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, मन एकदम कितना अच्छा लगता है, शांत अनुभव होता है, उसके एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है। लेकिन आप किसी मच्छी बाजार में जाओ, फिश मार्केट में जाओ, लगता है ऐसा? क्यों नहीं लगता है? तो हम जो मन में सोचते हैं, जैसे हमारी जो बोलते हैं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप सभी सुन रहे हो ना, सुन रहे हो ना, कैसे सुन रहे हो? तो जो मैं मुख से बोल रहा हूं ये साउंड वेव्स सूक्ष्म है, दिख नहीं रहा है, आप तक पहुंच रहा है, आप कैच कर रहे हो। इसी प्रकार हम मन में जो भी सोचते हैं ये भी एक सटल वेव्स की तरह चारों तरफ फैलता है और एक लाइट हाउस की तरह फैलता है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। कहते हैं महात्मा बुद्ध जहां तपस्या करते थे 5 माइल तक, उस 5 माइल रेडियस में कोई एंटर करते ही उसको एकदम शांति का अनुभव होता था। तो हमेशा हमें सोचना चाहिए कि मैं जो भी सोच रहा हूं ये लाइट हाउस की तरह चारों तरफ स्प्रेड हो रहा है। सो मॉनिटर योर एवरी थॉट, एक एक सोच को आप मॉनिटर कीजिएगा। नेवर अलाउ ए सिंगल नेगेटिव थॉट टू एंटर इन योर माइंड। हम अपने मन को देखें कि हमारे मन में क्या चल रहा है। ऑलवेज थिंक प्योर पॉजिटिव एंड पावरफुल, कहा जाता है सदा सकारात्मक विचार, सदा शक्तिशाली और सदा शुद्ध विचार मन में लाए। क्योंकि जैसे शरीर को हृष्ट पृष्ट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए अच्छा भोजन चाहिए, इसी प्रकार आत्मा या मन को भी अगर हम हेल्दी रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे थॉट्स, हमारी सोच, ये भी उसके लिए भोजन है। इसलिए कहते हैं फूड फॉर आवर लाइफ इज आवर थॉट्स। माइंड योर थॉट्स बिकॉज दे सून बिकम योर वर्ड्स। हम जो सोचते हैं फिर हम वो बोल देते हैं, फिर जो बोलते हैं वो कर भी देते हैं, और जो करते हैं फिर ऐसा परिणाम हमको भोगना पड़ता है। तो हमारे जीवन का वास्तव में आधार वास्तव में हमारा सोच है, फाउंडेशन ही हमारा सोच है। अगर किसी का सोच अच्छा हो गया तो जीवन ही अच्छा हो जाता है। सो आवर थॉट्स क्रिएट्स आवर डेस्टिनी। किसने कहा, सो ए थॉट रिप एन एक्शन, सो एन एक्शन रिप ए हैबिट, सो ए हैबिट रिप ए कैरेक्टर, सो ए कैरेक्टर रिप ए डेस्टिनी। जैसा सोच होता है ऐसा भाग्य बनता है। लोग भाग्य दिखाने के लिए फुटपाथ में जाते हैं, किसी ज्योतिषी, कोई पैरट तोता रह के बैठा है उसके पास कार्ड, पैरट कार्ड निकालते हैं, लेकिन वास्तव में अगर वो व्यक्ति आपका भाग्य बना सकता है तो फुटपाथ में खुद क्यों बैठा है? हम ही अपना भाग्य का सृजनहार है। हम जैसा सोचेंगे हमारा भाग्य ऐसा होगा। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। सो हाउ टू मेक आवर माइंड पॉजिटिव, मन को कैसे सकारात्मक बनाए। पॉजिटिव लाइफस्टाइल, जब तक हमारा लाइफस्टाइल पॉजिटिव नहीं होगा हमारे थॉट्स भी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो जीवन शैली को आज सकारात्मक बनाने की आवश्यकता है। आज अधिकतर लोगों की जीवन शैली देख लीजिए किस प्रकार का है। आज लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे संग, कैसा बहुत प्रकार की दुनिया में किस प्रकार, मैं तो कहता हूं भारत का एक जेनरेशन के अंदर क्या क्या परिवर्तन हो गया आप सोच भी नहीं सकते हो। एक जेनरेशन के अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। यहां जो भी 50 या 60 साल से उम्र जिसका ज्यादा है वो डेफिनेटली अनुभव करेंगे। ये 50 साल के अंदर क्या हुआ, पहले जमाने में हमारे घर में कोई भी आता था, हमारे घर के सामने दरवाजे में क्या लिखा रहता था, अतिथि देवो भव, सुस्वागतम, वेलकम। आजकल क्या लिखा रहता है, बी अवेयर ऑफ डॉग, कुत्ते से सावधान। पहले जमाने में घर के सामने एक आदमी बैठा रहता था दरवान के रूप में ताकि हमारे घर में कुत्ता घुस न जाए। आजकल घर घर के सामने कुत्ता है ताकि आदमी घुस न जाए। पहले जमाने में हमारे घर के सामने, घर में माताएं 6 बजते ही खटिया फटिया सब समेटा जाता था, कोई नहीं सोता था, 5 बजे 6 बजे समेट देते थे। आजकल 24 घंटा बेड लगा हुआ है, जितना बजे तक सुनाए सो जाओ। तो घर इतना बड़ा परिवर्तन आ गया समाज में। और क्या क्या आया, और क्या क्या आया, आपको हंसी आएगी बहुत सारी बातें, आप जानते होंगे, अनुभवी होंगे। आजकल घर में खाना कोई नहीं खाता है। पहले जमाने में माताएं बहुत अच्छा अच्छा भोजन बनाते थे, घर में सब खाते थे। आज जाओ हर 10 मीटर में आपको एक फैमिली रेस्टोरेंट मिलेगा। आप दिल्ली जाओ देखना, संडे का दिन छुट्टी है, अरे घर में बनाओ ना, अच्छे अच्छे भोजन खाओ ना। रेस्टोरेंट के सामने 3 घंटा लाइन लगाएंगे फैमिली के साथ, पूरा बच्चे बच्चे सहित 3 घंटा खड़े रहेंगे, लेकिन घर में खाना बना के नहीं खाना है। पहले जमाने में माताएं घर में खाना बनाते थे सुंदर सुंदर, और लोटा लेके लोग बाहर जाते थे टॉयलेट के लिए। आजकल लोग बाहर खाते हैं और टॉयलेट घर में करते हैं। और क्या परिवर्तन आया? और परिवर्तन आया कि पहले शादी होती थी, कोई फेस्टिवल होता था, तो खाना तो घर में माताएं बनाती थी, बहुत सुंदर सुंदर खाना बनाती थी, और नाचने वाले बाहर से आते थे। आजकल खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की माताएं डिस्को डांस करती है। क्या परिवर्तन हो गया समाज में? तो हमारे जीवन शैली को जब तक नहीं सुधारेंगे, कोई भी सदा खुश नहीं रह सकता है, मन सकारात्मक हो नहीं सकता है। और आज आपको आश्चर्य लगेगा, आज जो बहुत सारी बीमारियां फैल रही है, हमारे देश में थी नहीं। आपको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, स्ट्रोक, ये सब बीमारियां जो बहुत तेज गति से चारों तरफ घर घर में हो रही है, ये हमारे देश में थी नहीं। मैं जब मेडिसिन पढ़ता था, हमारे प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन कहते थे ये बीमारियां वेस्टर्न डिजीज, वेस्टर्न कल्चर के हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के हैं, और ये बुढ़ापा में ये बीमारी होती है, हमारे देश की बीमारी नहीं है। लेकिन आज हर तीसरा चौथा व्यक्ति को डायबिटीज। आपको तो आश्चर्य लगेगा, WHO से एक टीम आए थे दिल्ली में, हमारा सर्वे किया, 50% माताओं को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, 50%। दो तीन महीना पहले एक 10 साल का बच्चा को हार्ट अटैक हो गया, तो बाईपास सर्जरी करानी पड़ी। क्या हो गया, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस प्रकार का जीवन हमारा हो गया है। सो पॉजिटिव लाइफस्टाइल कैसे करें? सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा फूड। जब तक हमारा भोजन को ठीक नहीं करेंगे, हम जीवन में सदा खुश नहीं रह सकते हैं। क्योंकि जैसा अन्न ऐसा ही मन। तो अगर गंद चीजें खाएंगे तो मन भी ऐसा है, गंदा होगा। अगर अच्छा भोजन खाएंगे, आप मंदिर में जाते हो, थोड़ा सा प्रसाद कोई देता है तो कितनी खुशी होती है। इतना प्रसाद खा के अगर खुश होते हो तो रोज प्रसाद क्यों नहीं खाएं? अगर रोज प्रसाद खाएंगे तो कितनी खुशी होगी। तो घर में हमारा भोजन घर घर मंदिर जैसा था, घर में माताएं प्रसाद की तरह खाना बनाते थे। आजकल सब बाजार में खाओ, रेस्टोरेंट में कौन खाना बनाता है, किस प्रकार बनाता है, क्या खिलाता है, देखे हो कभी? आप घर में खाना बनाते हो, जो भी सब्जियां कितने बार छांट पीट करके उसको काटते हो, होटल में जो बनता है सब बनता है ऐसे स्वच्छ करके। कोई भी आया, मांस चपिंग होगा, उसमें कीड़े मकोड़े जो भी हो, उसमें अच्छा तेल, अच्छा खुशबूदार सब चीजें, मसाला वसाला डाल के डाइनिंग टेबल में बढ़िया बढ़िया म्यूजिक बजता होगा, सनमाय का टेबल पर बढ़िया बढ़िया डाइनिंग सेट में आपको खिलाएंगे। और उस समय थोड़ा लाइट डिम होनी चाहिए ताकि वहां जो कीड़े मकोड़े दिखे नहीं। तो खाएंगे तो क्या होगा, सोचो तो सही। तो जब तक हमारा खान पान में परिवर्तन नहीं होगा, मन कभी भी सदा खुश नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। दूसरी बात है कंपनी। जैसा संग ऐसा रंग। आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बैठो, उठो, अच्छी बातें सुनो, मन खुश रहेगा। आज के लोग किस प्रकार का चर्चा, कहीं भी जाओ देख लेना, या तो सिनेमा के बारे में, या तो क्रिकेट के बारे में, या तो पॉलिटिक्स के बारे में, नहीं तो परचिंतन, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या रहा है, उसकी बहू कैसी है, उसकी बेटा कैसा है, ये सब चर्चा दुनिया में। तो इसको परचिंतन कहा जाता है। तो जीवन में जैसा संग होता है, फिर ऐसा सोच विचार भी होता है। तीसरी बात है एविल्स, डेविल्स, ये क्या क्या चीजें मैं आगे बताऊंगा, वो भी हमारी मानसिक स्थिति को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। और हमारा स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कभी भी खुश नहीं रह सकते हो। जो हेल्दी होगा वो सदा खुश हो सकता है। और मेडिटेशन एक सुंदर विधि है जो यहां सिखाया जाता है। अगर आपको राजयोग मेडिटेशन आ गया तो जीवन में सदा खुश रह सकते हो। ये सब बातें हमारे जीवन में हमें जानना जरूरी है। सबसे पहला फूड। पहले जमाने में हमारे देश में जो खाना हम खाते थे, माताएं परोसती थी, भारतवर्ष में आज भी मंदिरों में जाइए, देखिए, आप वैष्णव देवी जाइए, वहां होटलों में भी आपको ये कांदा लहसुन ये सब नहीं मिलेगा। नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है। हमारे देश में हमारे पूर्वज ज्यादातर फल सब्जियां ये सब खाते थे। तो हमारे थाली में 50% तक वेजिटेबल्स होना चाहिए, 25% कार्ब्स होने चाहिए, 25% प्रोटीन होने चाहिए। ये बैलेंस डाइट है, हेल्दी डाइट है, जो आज साइंटिस्ट कहते हैं, जो हमारे भारतवर्ष में था, हमारी माताएं ऐसी खिलाती थी। लेकिन आज हम क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? आपको पता है एक बर्गर में 10 ग्राम सॉल्ट होता है, एक दिन में कितना खाना चाहिए? सिर्फ 3-4 ग्राम मैक्सिमम सॉल्ट खाना चाहिए। एक बर्गर में अगर 10 ग्राम हमारे बच्चे दो दो तीन तीन खा जाते हैं, क्या हार्ट अटैक नहीं होगा, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, पैरालिसिस नहीं होगी तो क्या होगा? ये सब इसमें प्रिजर्वेटिव्स है, इसमें ट्रांसफैट है, इसमें सारे कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस है। ये सब खा के हमारे देश में कोई नहीं खाता था। ये सब हमारे देश का क्या गायन था? दाल रोटी खाओ, बोलो सभी, दाल रोटी खाओ। कभी नहीं सुना होगा बर्गर पिज्जा खाओ प्रभु के गुण गाओ, सुना है कभी? लेकिन फैशन बन गया है, ये सब लोग यही खाते रहते हैं। तो हम जो खाते हैं उसी अनुरूप ही हमारे तन भी बनता है तो मन भी बनता है। हम जो खाएंगे उसी आधार से ही हमारा शरीर और मन दोनों बनता है। आज हम क्या क्या खा रहे हैं और क्या बन गए देख लो। हमारे देश में कोई मोटे थे ही नहीं। हमारे किसी भी मंदिर में चले जाओ, हमारे लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता कोई मोटे हैं देखे हो कभी? लक्ष्मी जी इतनी मोटी, राम जी इतना बड़ा पेटू, कभी देखे हो कहीं? आज हम सभी कैसे हो गए हैं, क्या हाल हो गया है? WHO का एक टीम आके सर्वे किए भारत में, दिल्ली में तो 55% माताएं मोटी हो चुकी है, 55%। अमेरिका में सबसे बड़ा स्वास्थ्य की समस्या अभी है मोटापा, 60% से भी ज्यादा लोग मोटे हो चुके हैं। हम भारत पीछे क्यों रहे? थोड़े दिन के बाद हम अमेरिका से भी आगे चले जाएंगे। तो आज घर घर में लोग क्या खा रहे हैं, घर में खाना नहीं बनाना है, बस जंक फूड फास्ट फूड ले आओ, पैकेट फाड़ो। उसको फास्ट फूड क्यों कहा जाता है जानते हो? उसको फास्ट फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, सीधा ले आओ फाड़ो, फास्ट फास्ट खाओ, फास्ट बीमारियां, फास्ट ऊपर जाओ। जिसको ऊपर जल्दी जाना है खाओ फास्ट फूड। ये सब कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है? खाली जहर है। आप कभी कोल्ड ड्रिंक्स में देख लो कितना प्रोटीन है, कितना आयरन है, कितना कैल्शियम है, कितना विटामिन है, मुझे बता दो। कुछ भी नहीं है, एम्प्टी कैलोरीज है। खा के पूरा फूल जाओगे, पूरा गुब्बारा जैसा, सारी बीमारियां आएगी, सब बीमारियां होंगी। फैशन बन गया है। पहले जमाने में हमारे घर में कोई भी आता था तो माताएं दूध पिलाती थी, लस्सी पिलाती थी, छाछ पिलाती थी, कुछ नहीं तो नींबू पानी पिलाती थी। आजकल कोई आया तो थम्सअप, ये फैशन बन गया है। तो ये सब गंद चीजें हैं। मैं तो सभी को कहूंगा, मेरे भाई और बहनों, आप एक परिवर्तन भूमि में आए हो। यहां कुछ जीवन में अच्छी बातें लेके जाना है और कुछ गंदी आदतें छोड़ के जाना है। ये तो एक बहाना है, आपको कॉन्फ्रेंस करके बुलाया गया, लेकिन जीवन की कुछ बातें यहां से लेके जाइए जो जीवन के लिए फायदेमंद है, आपके लिए, आपके परिवार के सदस्य के लिए, बच्चों के लिए। क्योंकि मां बाप रोल मॉडल है, आप जो करोगे बच्चे वही कॉपी करेंगे। और आज इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन कह रहा है, प्रोटेक्ट योर फ्यूचर, अदरवाइज योर किड्स विल डाई इन फ्रंट ऑफ यू। तुम अपने बच्चों को बचाओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने ही मौत होगा। आज प्रैक्टिकली देख रहा हूं, मां बाप को कोई बीमारी नहीं, बच्चे 15 साल की उम्र में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल हो गया है। तो बच्चे क्या क्या खा रहे हैं, मां बाप खाएंगे तो बच्चे तो ऑटोमेटिक खाएंगे। आप अगर रोल मॉडल बन के ये सब चीजों से दूर रहोगे तो बच्चों को शिक्षा दे सकते हो। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, ये बातें हमें समझने की आवश्यकता है। सो फूड एंड माइंड, ये दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। आज से लॉन्ग बैक समवन टोल्ड, लेट मी नो योर फूड, आई विल टेल व्हाट यू आर। मनुष्य की चरित्र की जानकारी उसके खाद्य रुचि से होती है, वो किस प्रकार का भोजन खाता है उसी आधार से उसका चरित्र क्या है बता सकते हैं। तो हमारा अगर चरित्र ही हमारे भोजन पर आधारित है तो हम क्या करना चाहिए? क्या मनुष्य शाकाहारी है या मांसाहारी है? शाकाहारी है या मांसाहारी है? जो कहते हैं शाकाहारी है हाथ उठाओ, वाह वेरी गुड। जो कहते हैं मांसाहारी है हाथ उठाओ, कोई नहीं? अच्छा, एक दो उठा रहे हैं। मैं एक भाई को पूछा, आप शाकाहारी हो? कहता नहीं। कहता फिर मांसाहारी हो? कहता नहीं। मैं तो सोच में पड़ गया, फिर क्या हो? तो कहता है मैं सर्वाहारी हूं, जो मिलता है खा जाता हूं, सर्वाहारी हूं। एक को पूछा आप वेजिटेरियन हो? कहता नहीं। तो कि फिर नॉन वेजिटेरियन हो? कहता नहीं। तो फिर क्या हो? कहता मैं मौकाटेरियन हूं, जैसा मौका मिलता है ऐसा। वास्तव में दुनिया में तीन प्रकार के प्राणी होते हैं। एक होता है कार्निवोरस अर्थात जो मांसाहारी, दूसरा होता है हर्बीवोरस अर्थात जो शाकाहारी, तीसरे होते हैं ओमनिवोरस जो दोनों खाते हैं, दोनों खाते हैं सर्वाहारी। तो मनुष्य सर्वाहारी है क्या? नहीं नहीं। आप देखिए एक घोड़े का दांत देख लीजिए कैसा है, एक भालू का हाथ दांत देख लीजिए कैसा है, और एक बाघ का दांत देख लीजिए कैसा है। अब बताओ मनुष्य का दांत किस प्रकार का है? किस प्रकार का है? घोड़ा जैसा है। तो घोड़ा शाकाहारी कि मांसाहारी? इसमें घोड़ा शाकाहारी है क्योंकि घास खाता है। भालू ओमनिवोरस है, दोनों खाता है, और पत्ते भी खा जाता है तो चींटियां भी खा जाता है, और दिमाग भी खा जाता है, कुछ भी मिलता है वो भी खा जाता है, और शेर बाघ ये तो मांसाहारी है। तो मनुष्य एक वास्तव में जहां दांत देखो कैसा है, घोड़े जैसा है, तो मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है। हमारे दांत सेम है मांसाहारी जैसा? नहीं है, इतने बड़े बड़े दांत नहीं है हमारे। अगर पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर देखो, हमारे सलाइवा से लेके इंटेस्टाइन से लेके सारा बॉडी का स्ट्रक्चर देखो, शाकाहारी प्राणी जैसा है। हमारे नाखून कैसा है? मांसाहारी प्राणी जैसा है? बिल्कुल नहीं, इतने बड़े बड़े नाखून भी नहीं है। किसी को हम अटैक करें, मारें, खाएं, लेकिन फिर भी हम खा रहे हैं, फिर भी हम खा रहे हैं। आपके पास एक पेट्रोल गाड़ी है और उसमें डेली कभी केरोसिन डाल रहे हो, कभी नारियल तेल डाल रहे हो, क्या होगा? क्या होगा? खराब नहीं होगा? आपको तो वंडर लगेगा लोग क्या खा रहे हैं आज। मेरे पास जो वीडियो है दिखाऊंगा, सोच भी नहीं सकते हो। आज लोग, एक दुनिया में ऐसा प्राणी नहीं है जो दूसरों को, अपने जाति का प्राणी को खाए। एक बाघ बाघ को नहीं खाएगा, एक शेर शेर को नहीं खाएगा, एक कुत्ता कुत्ता को कभी नहीं खाएगा, लेकिन आज मनुष्य तो सब कुछ खा जाता है। मैं कहीं गया था, वहां पहली बार सुना, देखा कि कुत्ता आदमी को देख के भागता है। हमारे यहां आदमी कुत्ता को देख के भागता है, वहां पहली बार देखा कुत्ता आदमी को देख के भागता है। गाड़ी मोटर देख लिया तो वो तो दुम दबा के ऐसे भागता है कि बात मत पूछो। क्यों? क्योंकि वहां कुत्ता भी मार के खा जाता है। चलो कुत्ता मार के खाए तो अलग बात है, आप देखो क्या खा रहा है। एक देश है जहां लोग जो डिलीवरी वार्ड के सामने सबरे सबरे अर्ली मॉर्निंग एक लंबी क्यू लगती है। क्यों? क्योंकि रात भर जो बच्चे, मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं, एवर्सन हो जाता है वो सबको खरीदने के लिए, और लेके उसको सरिया डाल के उसको भून के मकई की तरह खाते हैं। कैसे खा रहे हैं देख लो, क्या हो गया मनुष्य को आज, दानव राक्षस हो गया है, मैं बता रहा हूं। सो एज द फूड सो द माइंड। आप तो, मैं वीडियो दिखाऊं आपको, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, आपको उल्टी आ जाएगी। आप चाइना जाओ देखना, वहां कॉकरोच कच्चा भी खा जाते हैं, कॉकरोच इंडस्ट्री है वहां, लाखों करोड़ों कॉकरोच उगाते हैं वहां, खाना पीना रखे कॉकरोच बनाते हैं, और उसको जैसे आप पकोड़े तलते हो, समोसे तलते हो, कढ़ाई में कॉकरोच डाल देते हैं और उसको तल के खा रहे हैं। सोच भी नहीं सकते हो आज मनुष्य को क्या हो गया है। सो मेरे भाई और बहनों, हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, स्वास्थ्यवान बनने के लिए, मन को ठीक रखने के लिए हमारे भोजन पर ध्यान देना जरूरी है। दूसरी बात है हमारी कंपनी, हमारे संघ कैसा होना चाहिए, क्योंकि जैसा संघ ऐसा रंग। अगर हम अच्छे लोगों के साथ बैठे उठेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, जीवन सदा खुश रहेगा। बहुत व्यर्थ बातें, फालतू बातें, नेगेटिव बातें सुनेंगे, मन उदास हो जाएगा। तो हमारा संघ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और संघ में खाली व्यक्ति नहीं आता है। हम जो टेलीविजन देखते हैं, जो किताब पढ़ते हैं, वो भी संघ है। एक भाई मैं जानता हूं, एक दिन अखबार पढ़ते पढ़ते एक गंदा, आजकल तो अखबार में क्या क्या डालते हैं आप सोच भी नहीं सकते हो, तो उसमें एक स्टोरी ऐसा पढ़ा, 15 दिन तक रिपेंट किया। छी, एक बहुत खराब स्टोरी पढ़ लिया, छी छी, 15 दिन तक रिपेंट किया होगा। क्यों पढ़े ऐसी चीज? तो मन की स्थिति का आधार हमारा संघ है, जिसमें हमारा भोजन भी है, हमारे व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के साथ उठते बैठते वो भी है, जो देखते हैं वो भी संघ है, और जो पढ़ते हैं वो भी हमारा संघ है। इससे हमें सावधान रहना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट है एविल्स एंड डेविल्स। आज बहुत सारे मानसिक स्वास्थ्य में परिवर्तन हम देख रहे हैं। एक जेनरेशन के अंदर मैं बताऊंगा, हमारे देश में सब खुश रहते थे, लेकिन आज मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। सारे वर्ल्ड में, अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में, वहां तो अधिकतर लोग मेंटली साइकिक। भारत में भी ये बढ़ता जा रहा है। इसका कारण है एविल्स एंड डेविल्स। तो एविल्स क्या चीज है? हमारे पास कहा जाता है एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली मन शैतान का घर है। तो मन में जो सदा सकारात्मक विचार, समर्थ विचार क्रिएट करना जानता है, उसके मन में जैसे कोई घर ऑक्युपाइड है तो वहां भूत प्रेत आएंगे नहीं। घर में कोई नहीं है, सालों साल खाली है, तो भूत प्रेत आएंगे ही। तो जिसका मन खाली है शैतान का घर बन जाता है। अज्ञानता भी एक कारण है हमारे मन में ये सब एविल्स और डेविल्स घुस जाने का। ये चीज क्या है? देर आर फाइव डेविल्स एंड देर आर सेवन एविल्स। ये हमारे मन को नकारात्मक बना देते हैं, शक्तिहीन करा देते हैं, जिसमें खुशी की आयब हो जाती है। तो पांच डेविल्स कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पांच डेविल्स हैं, अगर हमारे जीवन में घुस गए तो खुशियां छीन लेते हैं, कभी खुश नहीं रह सकते। जो निर्विकार है वो सदा खुश रह सकता है। हमारे देवी देवताएं निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, इसलिए खुश रहते थे सदा। आज मनुष्य के जीवन में विकार है, डेविल्स है, इसलिए दुखी है। और सेवन एविल्स कौन से हैं? सेवन एविल्स कौन से हैं? कौन से हैं? हियर नो एविल, बुरी बातें सुनो ही नहीं। महात्मा गांधी तीन बंदर दिखाते थे, वो बंदर के लिए शिक्षा है? नहीं नहीं, वो तो हमारे लिए शिक्षा है। हियर नो एविल, सी नो एविल, बुरी बातें देखो भी नहीं। टॉक नो एविल, बुरी बातें करो भी नहीं। और डू नो एविल, गंदा काम करो भी नहीं। थिंक नो एविल, गंदी बातें सोचो भी नहीं। और दो कौन से दो बातें और दो एविल बताइए? और कौन से दो एविल है? वो है ईट नो एविल, गंदी चीजें खाओ भी नहीं, स्वास्थ्य भी खराब होगा, मन भी खराब होगा। एंड रीड नो एविल, गंदी किताब पढ़ो भी नहीं, ये भी मन को खराब करता है। तो ये फाइव डेविल्स एंड सेवन एविल्स को अगर हम काबू में रख लिए तो मन सदा खुश रह सकता है। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ। व्हाट इज हेल्थ? स्वास्थ्य क्या चीज है? स्वास्थ्य की परिभाषा हर एक व्यक्ति अपने ढंग से करता है। मेरे पास इतने बड़े बड़े मोटे मोटे लोग आते हैं, मैं कहता हूं भाई अपना स्वास्थ्य तो थोड़ा संभालो, देखो। कहते डॉक्टर साहब अभी तो फिर भी अच्छा हूं, पहले तो और हेल्दी था। अर्थात जो जितना मोटू है उतना हेल्दी है क्या? नहीं नहीं, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेल बींग। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेल बींग। व्हाट इज वेल बींग? वेल बींग मीन्स ए स्टेट ऑफ कंफर्टेबल, बींग कंफर्टेबल, हेल्दी एंड हैप्पी। कोई व्यक्ति सदा कंफर्टेबल फील करता है, हेल्दी महसूस करता है, हैप्पी महसूस करता है, उसको हम वेलबींग कहते हैं। आजकल वेलबींग सेंटर, वेलनेस क्लिनिक बहुत सारे देखोगे आप। सो हाउ टू रिमेन हेल्दी, जीवन में सदा हेल्दी कैसे रहे? WHO की परिभाषा है इट इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ ए पर्सन एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। खाली कोई बीमार नहीं तो वो हेल्दी है, ऐसी बात नहीं है। कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ है तो वो व्यक्ति को संपूर्ण स्वास्थ्यवान कहेंगे। तो हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, कैसे रहेगा, कैसे रहेगा, हाउ टू रिमेन हेल्दी? तीन बातें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, अगर तीन बातें भी अगर जीवन में हम अनुकरण करें और स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो जीवन में हेल्दी रह सकते हैं। वो है नियमित कर्मठ जीवन और व्यायाम। नियमित हम कर्मठ जीवन जिए और व्यायाम करें तो जीवन में डेफिनेटली हेल्दी रहेंगे। हमारे ब्रह्मा बाबा रोल मॉडल है। आप बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स को देखे होंगे, बहुत सारे महंत महामंडलेश्वरों को देखे होंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा का हमारा हाइट 6 फुट था। 6 फुट होने के बाद भी बाबा ना पतले दुबले थे ना मोटे थे, बाबा का पेट इतना बड़ा हुआ नहीं था, एकदम फिट फिजिकली। 93 उम्र तक भी कोई डंडा नहीं पकड़े, कोई चश्मा नहीं पहने, पहाड़ी चढ़ने में नंबर 1, बैडमिंटन टेनिस खेलने में नंबर 1, सब काम बाबा करके दिखा देते, खुद मेहनत करते थे, अंत तक कर्मठ जीवन था। तो कर्मठ जीवन जिए, लेकिन हमारे देश में आजकल क्या हो गया, माताओं को सबसे बहुत सुविधा हो गई। पहले जमाने में लकड़ी लाते थे जंगल से, खाना पकाते थे, काला हो जाता था, बर्तन घिसते थे, चक्की पीसते थे, आटा ये करते थे, कितने क्या क्या कपड़े धोते थे। आजकल तो खाली बटन दबाओ घर हो गया सब कुछ, कपड़े भी घर धुल गया, सूख गया। पहले तो कम से कम सुखाते थे, हाथ तो ऐसा होता था, वो भी नहीं। आधे घंटे में खाना बन जाता था, बन जाता है, बस 15 घंटा बैठ के खाली टीवी देखते रहो, क्या होगा। और विदेश में तो फिर भी जाओ, लोग सब कुछ करते हैं। कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, वो अपना गार्डनिंग करेगा, कार धोएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन हमारे देश में थोड़ा पैसा हो गया, बस बन जाते हैं सेठ और सेठानी, सब नौकर चाकर करेंगे। तो फिजिकली एक्टिव रहें, व्यायाम करें, और साथ साथ शाकाहारी, वेजिटेबल, वेजिटेरियन एंड बैलेंस डाइट, शुद्ध शाकाहारी संतुलित आहार होना चाहिए, वेजिटेरियन एंड बैलेंस डाइट होना चाहिए, तो ही जीवन में ठीक रह सकते हैं। वास्तव में जो मांस आदि लोग खाते हैं, कोई मुर्दा को काट के नहीं खाता है, प्रैक्टिकली मर्डर किया जाता है, एक जानवर को मर्डर किया जाता है। अभी अभी किसी से एक मैसेज मिला, बकरी सारे कह रहे हैं ये ईद बकरी कैसा फेस्टिवल है, लोग तो आपस में गले मिल रहे हैं और हमारा गला काट रहे हैं। तो हम एक पशु पंछी को घर में रखते हैं, डोमेस्टिक एनिमल के रूप में पालते हैं, पोसते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, बीमार होते हैं तो वेटरनरी सर्जन के पास जाके इलाज कराते हैं, और एक दिन उसको गर्दन काट के खाएं, इसको मानविकता कहेंगे? नहीं नहीं। हमारा बच्चा को भी अगर कोई किसी के घर में रखे, खिलाए पिलाए, पढ़ाए, और एक दिन उसका गर्दन मोड़ के खा जाए तो कैसा लगेगा? जब किसी जानवर को मारा जाता है, वो अंदर से अपने को बचाने के लिए जितने टॉक्सिन से लिबरेट करता है, और वो खून में सर्कुलेट होकर मांस में जमा होता है, जब उसको खाएंगे वो टॉक्सिन्स कहां जाएगा, बीमार नहीं होंगे। आज साइंटिस्ट कहते हैं बहुत सारी बीमारियों का कारण वही है। किसी भी धर्म में कभी भी नहीं कहा गया कि किसी को मार के खाओ। इवन मुस्लिम रिलीजन में मेरे पास बहुत सारे एविडेंस है, बहुत सारे वीडियोज है, उनका जो रिसर्च किए हैं डॉक्टर्स है, मुस्लिम डॉक्टर्स कहते हैं नो, हमारे मोहम्मद ने कभी नहीं कहा था ये सब खाने के लिए। आज आदमी आउट ऑफ परवर्सन, ये 2 इंच जुबान का गुलाम होकर क्या क्या खा रहा है सोच नहीं सकते। तो हमारा भोजन भी शुद्ध शाकाहारी भोजन होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए, तो ही हम हेल्दी रह सकते हैं। हमारा थाली में 50% सब्जियां होनी चाहिए, 25% चावल चपाती, 25% दालें होनी चाहिए, थोड़ा मिल्क प्रोडक्ट लें तो ही ठीक होगा। तीसरी बात है, हम रेगुलर हेल्थ चेकअप करें, क्योंकि जैसे शरीर एक गाड़ी है, गाड़ी को जैसे आप सर्विसिंग कराते हो, खाली गाड़ी चलाते रहो सर्विसिंग नहीं करो तो गाड़ी क्या होगी, एक दिन एक्सीडेंट। इसी प्रकार हम अपना बीपी कितना है, शुगर कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, लीवर क्या है, किडनी कैसे पता चलेगा। तो साल में कम से कम अपना हेल्थ चेकअप एक बार करा लेना चाहिए, तो ही हम जीवन में हेल्दी रह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेडिटेशन, जिसमें हमारा मन सदा सकारात्मक रह सकता है। क्योंकि मेडिटेशन कुछ नहीं है, वास्तव में मेडिटेशन इज ए आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मन में सदा सकारात्मक विचार कैसे लाएं, उसको ही हम मेडिटेशन कहते हैं। सो प्रैक्टिस राजयोग मेडिटेशन। दुनिया में बहुत प्रकार के मेडिटेशन लोग सिखाते हैं, बहुत प्रकार के मेडिटेशन सिखाते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, जो हमारे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान जो राजयोग मेडिटेशन सिखा के गए थे, वही मेडिटेशन है, जिसमें मन को सदा सकारात्मक विचार से भरपूर किया जाता है और जीवन में आनंद ही आनंद अनुभव होता है। आप देखे होंगे हमारे देश में जितने भी योगी होकर गए हैं, सभी अपना नाम को बदलकर क्या लिखते हैं, आनंद शब्द जोड़ देते हैं, शिवानंद, चिन्मयानंद, दयानंद, विवेकानंद, आनंद ही आनंद। आनंद माने क्या, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ए ब्लिसफुल स्टेट ऑफ द माइंड। तो जो जीवन में सदा योग अभ्यास करता है, राजयोग मेडिटेशन अभ्यास करता है, मेडिटेशन इज ए स्टेज ऑफ राजयोगा, देर आर 4 स्टेजेस ऑफ राजयोग, इनिशिएशन, मेडिटेशन, कंसेंट्रेशन, रियलाइजेशन, देर आर 4 स्टेजेस। तो आप जो ऐसा योग अभ्यास करेगा, जीवन में सदा खुश रह सकता है। तो राजयोग मेडिटेशन इज ए साइंस ऑफ एम्पावरिंग द सेल्फ, जिसमें मनोबल बढ़ता है। आज आदमी 6 फुट हाइट का होगा, लेकिन 2 इंच का सिगरेट का गुलाम है, जो नहीं खाना चाहिए खा रहा है, जो नहीं करना चाहिए कर रहा है, तो हम अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं। जीवन के नकारात्मक चीजों को हम त्याग करने के लिए भी शक्ति चाहिए और सकारात्मक चीजों को अपनाने के लिए भी शक्ति चाहिए। तो इसलिए राजयोग मेडिटेशन एक मनोविज्ञान है, इसमें मन को सदा शक्तिशाली बनाया जाता है। सो मेडिटेशन एन आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, मन में सदा कैसे सकारात्मक विचार लाए, वो एक बहुत सुंदर कला है। जीवन में दोस्तों आज क्या क्या कर रहे हैं लोग आप सोच भी नहीं सकते हो, मैं दिखाऊंगा वीडियो एक दो। जीवन में तीन बहुत अमूल्य चीज है, हर कोई महसूस करता है। वो तीन चीजें कौन सी है? हर व्यक्ति चाहता है ये तीन चीजें मेरे जीवन में हो। क्या कौन सी तीन चीजें? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हर कोई चाहता है। ये तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? कौन सा है आज दुनिया में? क्या है बता दो, रियलिटी क्या है बता दो? पैसा। सबसे इंपॉर्टेंट आज पैसा है। वास्तव में पैसा से भी हमारा स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? देखा गया है 50 साल तक आदमी पैसा 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 पैसा, खाना पीना भूल जाएगा, परिवार भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा, पैसा चाहिए मुझे बस। और 50 साल के बाद सडन एक दिन हार्ट अटैक हो गया। जितना कमाया था 50 साल तक, एक हफ्ता के अंदर आईसीयू में गया। इसको बुद्धिमान कहेंगे? नहीं। देखिए महात्मा गांधी जो हमारे नेशनल फादर कहते थे कि हीरे मोती वास्तव में कोई वेल्थ नहीं है, इट इज हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ एंड नॉट द पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। हमारे पास धन संपत्ति कितना भी हो, वास्तव में वो रियल वेल्थ नहीं है। रियल वेल्थ हमारा स्वास्थ्य है। जिस देश में सभी स्वास्थ्यवान है वो देश वास्तव में समृद्ध है। तो हमारे सभी के जीवन में असली संपत्ति तो हमारा स्वास्थ्य है। और कई लोग स्वास्थ्य के लिए हमारे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब कोई दवाई लिख दो ना, मैं हेल्दी रहूं सदा। देयर इज नो मिराकुलस ड्रग दैट कैन मेक यू हेल्दी। कोई दवाई से कोई स्वास्थ्यवान नहीं रह सकता है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि नियमित अगर आपका भोजन ठीक करेंगे, नियमित थोड़ा व्यायाम करेंगे, सदा सकारात्मक विचार मन में चलेगा, मेडिटेशन सीखेंगे, 100% आप सदा हेल्दी रह सकते हो। आपने कभी सुना है राम जी को थायराइड की बीमारी थी, लक्ष्मी जी को डायबिटीज था? सुने हो कभी किसी को हाई ब्लड प्रेशर था? हमारे पूर्वज सभी निरोगी थे। कंचन काया निरोगी काया कहावत है, इसलिए सदा खुश रहते थे। आज घर घर में बीमारियां, खुशी कहां से आएगी? चेहरा देखो सबका कैसा है। सो व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट योर इकोनॉमी इज लॉस्ट, धन गया। योर एंथुसियाज्म लाइफ इज लॉस्ट, उमंग उत्साह गया। तो सुना रहा था जब किसी का स्वास्थ्य कोई खो देता है, उसका धन गंवाता है, जीवन का उमंग उत्साह गंवाता है, एंजॉयमेंट भी चला जाता है। डायबिटीज से खटिया में पड़े हैं, सब गुलाब जामुन खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, देख रहे हैं, खा नहीं सकते। तो लोग एंजॉय करते रहेंगे, देखते रहेंगे। एंटरटेनमेंट इन लाइफ इज लॉस्ट, जीवन में खुशियां मनाना वो भी खत्म हो जाएगा। यूफोरिया इज लॉस्ट, दिस सेंस ऑफ वेलबींग। देखना कई लोग ऐसे हैं, पूछेंगे कैसे हो, पता नहीं आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आज कुछ मजा नहीं आ रहा है, वो भी एक बीमारी है। जीवन में सदा एकदम अच्छा लगना चाहिए, खुश अनुभव होना चाहिए, उसको यूफोरिया कहते हैं मेडिकल भाषा में। तो व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट दिस सेंस ऑफ वेलबींग, यूफोरिया इज लॉस्ट, देन योर एफिशिएंसी इज लॉस्ट, योर इफर्ट इज लॉस्ट, एनर्जी इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट एंड द होल एसेंस ऑफ लाइफ इज लॉस्ट। मैं कहूंगा जीवन का सब कुछ गया। जीवन में स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, जीवन में सदा खुश रहना चाहिए, क्योंकि आज अधिकतर बीमारियां जो है वो सारा इसका कारण है मानसिक तनाव। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन कह रहा है 60% से ज्यादा बीमारियों का कारण मानसिक तनाव है, क्योंकि मन में सकारात्मक विचार ही नहीं है, मन खुश नहीं है। तो जब जीवन में आप हेल्दी रहोगे, यू बिकम चेयरफुल, यू बिकम लवफुल, यू बिकम ब्यूटिफुल, यू बिकम पीसफुल, यू बिकम ब्लिसफुल, जॉयफुल एंड सक्सेसफुल। तो जीवन में सदा सब कुछ भरपूर आनंद लेने के लिए हेल्थ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लाइफ का है। हमारी दादी जो आज 100+ है, कोई बिरला डॉक्टर 100+ तक जिंदा रहा होगा, हमारे दादी बिकॉज ऑफ नॉलेज एंड स्पिरिचुअल नॉलेज एंड मेडिटेशन सी एट द एज ऑफ 100 ऑल्सो अभी भी विदेश घूम रही है, आज भी हजारों के सामने भाषण कर रही है। तो हमारी दादी कहती है नेवर नेग्लेक्ट योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना, इट इज योर ग्रेटेस्ट वेल्थ, ये तुम्हारा सबसे बड़ी संपत्ति है। तो जीवन में जो स्वस्थ नहीं है वो जीवन क्या जीवन है, हाय हाय करके सारा जीवन गया, क्या मतलब है। तो जीवन में स्वस्थ रखने की कला जिसको नहीं आया वो जीवन जीने की कला ही नहीं सिखाए। सो हाउ टू रिमेन हेल्दी, कौन नहीं चाहता है जीवन में हेल्दी रहे, सो लेट अस चेंज अवर लाइफ स्टाइल, हमारे जीवन शैली को बदलें। आज मनुष्य के जीवन कैसा है, एक कैटरपिलर की तरह है। आप देखना बारिश के सीजन में एक कीड़ा होता है काला काला, कहीं भी लगता है तो खुजली होती है, लेकिन वो लार्वा प्यूपा होकर जब बटरफ्लाई बन जाता है कितना सुंदर लगता है, एक तितली के जैसा उड़ जाता है। तो जीवन को आज मनुष्य के जीवन ऐसे कैटरपिलर की तरह है, जब हम पॉजिटिव लाइफस्टाइल सीखेंगे जीवन में, जीवन ऐसे तितली समान इतना सुंदर हो जाएगा। सो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इन द एसेंस मैं आपको बताता हूं, जल्दी सोना है, जल्दी खाना है, जल्दी सोना है, ईट अर्ली एंड स्लीप अर्ली, 10 बजे तक सो जाना चाहिए, 10:30 मैक्सिमम 11 उसके बाद में। साइंटिस्ट लोगों ने देखा है 10 बजे से 4 बजे तक जो समय है इस समय सोने का है, इस समय जो जागता है उसको हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर सब बीमारियां होगी, स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत रिलीज होते हैं, उस समय जो सोएगा हेल्दी रहेगा। इसलिए आज तो साइंटिस्ट अभी कह रहे हैं, हमारे ब्रह्मा बाबा ने 80 साल पहले जो नियम बनाया है सारे वर्ल्ड में हम फॉलो करते हैं, 10 बजे के बाद हम सो जाते हैं, 4 बजे से पहले उठते हैं, कितना सुंदर जीवन है। तो इसलिए ईट अर्ली स्लीप अर्ली, कहा जाता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मैक्सिमम हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। दूसरी बात है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पर्सनल हाइजीन, हमारे शारीरिक हाइजीन पर बहुत अटेंशन देना जरूरी है, नहीं तो बीमारियां होती है। तो शारीरिक हाइजीन तो आप जानते हो, ये सब बातें डिटेल में नहीं बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तन और मन से दुरुस्त रहना चाहते हो तो तन का भी एक्सरसाइज करो, मन का भी एक्सरसाइज करो। मन का एक्सरसाइज है मेडिटेशन, और तन का एक्सरसाइज तो बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन मैं बहुत एक सुंदर एक्सरसाइज सिखाता हूं जिसको होलिस्टिक एक्सरसाइज हम कहते हैं, होलिस्टिक एक्सरसाइज, जिसमें एरोबिक, एनरोबिक, एक्यूप्रेशर सब कुछ आ जाता है, सब कुछ हमारे लिटरेचर स्टॉल में मिलता है, इधर आप ले सकते हो, देख सकते हो, इसमें सब कुछ है, घर बैठे कर सकते हो, कोई जिम खाना में जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, वेरी सिंपल एक्सरसाइज। कितने लोग दुआएं देते हैं जो करते हैं प्रैक्टिस, सब कुछ, बहुत कुछ बीमारियां ठीक हो जाती है। तो तन का भी और मन का भी दोनों एक्सरसाइज करना जरूरी है। वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कहते हैं, लेकिन वॉकिंग इज नॉट ए कंप्लीट एक्सरसाइज, आपका शोल्डर जॉइंट मूवमेंट नहीं हो रहा है, आपका नेक जॉइंट मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वॉकिंग के साथ साथ भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, जो मैं सिखाया हूं आप लेके देख सकते हो। ईट मॉडरेट, हमेशा कम खाओ, कम खाने से कोई बीमार नहीं होता है, 1/3 हमेशा खाली रहना चाहिए पेट का, जो ज्यादा खाता है वही बीमार होता है। लोग इतना खा जाते हैं कि ऑड ही करते समय सारा गैस निकलते समय आ करेंगे तो दिखेगा क्या खाया है, नहीं, कम खाएं, कम कम खाएं, 4-5 बार खाएं, कम से कम 4 बार, सवेरे 8-9 बजे तक नाश्ता, 1-2 बजे तक लंच, 4-5 बजे हल्का सा कुछ नाश्ता, फिर रात को 8-9 बजे तक डिनर। हमेशा शाकाहारी रहना जरूरी है। मैं यहां हाथ नहीं खड़ा कराऊंगा, लेकिन आज यहां से एक आप भगवान के दर पर आए हो, एक महान तीर्थ भूमि, परिवर्तन भूमि में आए हो, यहां से प्रण करके जाओ कि मुझे शुद्ध शाकाहारी, मैं देववंशी हूं, मेरे पूर्वज हमारे कुल देव कुल देवी सब देवी देवता थे, उनका ही संस्कृति, उनके ही कल्चर मेरा होना चाहिए। तो यहां से शाकाहारी रहने का दृढ़ प्रतिज्ञा होकर जाना। दिन में 8-10 ग्लास पानी कम से कम पीना चाहिए, जो कम पानी पीते हैं बहुत सारी बीमारियां होती है, कब्जी होगी, गंदगी निकलेगी नहीं, तो 8-10 ग्लास मिनिमम पीना चाहिए, 3-4 लीटर भी पी सकते हो। अगर आपके किडनी में कोई प्रॉब्लम है, आपके डॉक्टर मना करते हैं, तो कम पियो भले, नहीं तो 3-4 लीटर 5 लीटर भी पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई लोग कहते हैं सवेरे सवेरे पानी नहीं पीना है, बिल्कुल गलत, आप सवेरे सवेरे खूब पानी पियो, थोड़ा टहलो, गर्म गर्म गुनगुना पानी पियो, टहलो फिर पानी पी जाओ, देखो एकदम पेट फेट साफ हो जाएगा। 12 बजे तक पानी नहीं पियो तो बॉडी का टॉक्सिन्स निकलेगा कैसे। हमेशा नो एडिक्शन, कोई कितना भी बहकाव करे, आपको कुछ भी ऑफर करे, फ्री भी दे, नो। सिगरेट, शराब, ये सब चीजें बहुत बहुत खराब चीजें हैं। लेकिन आपको कई डॉक्टर कहेंगे कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, क्योंकि डॉक्टर खुद पीता है तो कैसे मना करेगा आपको। पॉइजन इज पॉइजन, आप ज्यादा पॉइजन लेंगे तो तुरंत डेथ, कम पॉइजन लेंगे तो स्लो पॉइजनिंग होगा। ये सब नुकसानकारक है। नो एडिक्शन प्लीज, नो एडिक्शन। अब प्रश्न उठता है, हेल्थ और वेल्थ में कौन सा प्रायोरिटी दिया आपने, किसको प्रायोरिटी दिया? अभी हेल्थ और हैप्पीनेस में दोनों में से कौन सा, किसको प्रायोरिटी देंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे? ये दोनों में आपस में बहुत बड़ा गहरा संबंध है। आप खुश रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो खुश रहेंगे, है ना? नहीं तो देखिए, दलाई लामा कहते हैं हैप्पीनेस इज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ हेल्थ। जो एकदम कंप्लीटली हेल्दी होगा वो सदा खुश रहेगा, सदा खुश रहेगा। हमारे सतयुग त्रेता युग में देख लीजिए, हमारे लक्ष्मी नारायण या हमारे राम सीता जी, चेहरा देखो कैसा है, सदा खुश, कोई बीमारी नहीं। कौन से जिम खाना में जाते थे, कौन से हेल्थ क्लब में जाते थे, कौन से अनुलोम विलोम कपाल भाती या शीर्षासन, पद्मासन, बकरासन, फलासन करते थे? कुछ नहीं करते थे। द्वापर युग में फिर भी हम हेल्दी थे, क्योंकि उस समय भी हम खेती बाड़ी, कुआं से पानी निकालना मेहनत करते थे। आज कलयुग आ गया तो क्या हाल हो गया? मैं कहता हूं कलयुगी लक्ष्मी नारायण है, ये कलयुगी लक्ष्मी नारायण देख लो क्या हाल हो गया हमारा। एक व्यक्ति अपना पेट भरने के लिए सवेरे सवेरे रिक्शा लेके दौड़ रहा है, गाड़ी लेके मेलों तक दौड़ रहा है, दूसरा व्यक्ति अपना पेट घटाने के लिए दौड़ रहा है। तो खाएं क्यों ज्यादा और फिर घटाने के लिए इतने मेहनत भी क्यों? सत्युग त्रेतायुग में कैसे हेल्दी थे? सदा खुश रहते थे और सदा डांस करते थे, रास करते थे, जिसके कारण एक्सरसाइज भी हो जाता था, इसलिए वो सदा हेल्दी रहते थे। नाउ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये दोनों को किसी को प्रायोरिटी देंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे? देखिए, आज हमारे पास बहुत धन होने के कारण ये सब सौगात मिला है, विज्ञान का सौगात, और हम सभी क्या हो गए हैं, सिडेंटरी हो गए हैं, सिडेंटरी हो गए हैं, आलसू हो गए हैं, जिसके कारण आज सारी बीमारियां हैं। साइंटिस्ट कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज हाजार्डस, लंबे समय तक बैठने से ही सारी बीमारियां हो रही है। इट इज बेटर टू बी पुअर एंड हैप्पी देन टू बी रिच एंड मिजरेबल। जीवन में सब कुछ धन संपत्ति है लेकिन खुशी नहीं है, कैसा एक खोखलापन, कैसा एक नीरस जीवन, अकेलापन। मैं एक अभी ट्रेन में जा रहा था, एक फैमिली मिले, सब एकदम 100 किलो से ज्यादा। मैं पूछा, आप थोड़ा ध्यान दो। कहते क्या करें डॉक्टर साहब, आप जानते हो हम एक कमरे से दूसरे कमरे में SMS करते हैं और नहीं तो फोन करके बात करते हैं, हिलना नहीं कि डुलना नहीं। एक कमरे से दूसरे कमरे में उनकी बीवी है कि बच्चे हैं तो SMS करेंगे नहीं तो फोन करेंगे, क्या हाल हो गया है। तो विज्ञान के साधन दिया है, ठीक है। तो मनी विल नेवर मेक यू हैप्पी इफ यू आर एन अनहैप्पी पर्सन। जीवन में अगर हमारी पर्सनैलिटी, हमारे संस्कार ही दुखी होने का है तो कितना भी धन संपत्ति हो आप सुख नहीं पा सकते हो। इसलिए पुअर पीपुल आर ऑफन मोस्ट जेनरस। देखा गया है जो गरीब होगा वो ज्यादा आपको दे देगा, धन लोग तो कंजूस होते हैं। आप सोच नहीं सकते, मैं श्रीनगर गया था, वहां देखा एप्पल गार्डन, इतना लदा हुआ एप्पल, एक एक पेड़ में 100,000 किलो एप्पल होगा शायद, एकदम लदे हुए हैं। मैं गया वहां, मैं बोला एक हम ले सकते हैं, बोला खाओ खाओ, इतना टेस्टी की बात मत पूछो, छिलका निकलने की जरूरत नहीं। मैं बोला इतना टेस्टी है हमको, देना हमको कुछ दो, 8-10 किलो दे दो, मैं पैसा देता हूं। बोला कि हम नहीं बेचते हैं। मैं बोला क्यों? नहीं, ये सब सेल हो चुका है। लगे रुको, ये पेड़ से नहीं तोड़ना है, मैं आता हूं। घर गया, आधा बोरी लेके आया, आधा बोरी, सिंपल ऑर्डिनरी फैमिली, आधा बोरी लेके कहता है लो। मैं बोला कितना पैसा दूं? बोला कि कोई पैसा जरूरत नहीं, ले लो। मैं उनको दे के आया पैसा, यहां अगर खरीदेंगे तो मिनिमम 1000 रुपया होगा। तो जो गरीब होते हैं देखा जाता है वो अक्सर करके जेनरस होते हैं, उधार, जो बहुत पैसा वाले होते कंजूस मक्खी चूस होते हैं। सो आज जो हमारे पास साधन है इसका क्या हजार्ड से आप कभी सोच नहीं सकते हो। इसमें कितना रेडिएशन हो रहा है, आप बच्चों को इससे बचाओ। मैं आपको कहता हूं ये एडिक्शन हो गया है हमारे। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, आप आज हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों को ये सब देते हैं खिलौना, लेकिन इसका हजार्ड क्या है, इसका दुष्प्रभाव क्या है देख लो। आप देखेंगे तो आप बच्चों को इससे दूर रखोगे, आप खुद देख लीजिए आपको समझ में आएगा।
है कि ये जो बच्ची है इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो इंटरनेट यूज करने से हुई है। मोबाइल और ये आईफोन आईपैड जो हम यूज करते हैं, हमारे बच्चे बहुत ज्यादा कसरत से यूज करते हैं, इस वजह से इस बच्ची के मेंटली इसको प्रॉब्लम हुआ है। और जो ये प्रॉब्लम हुआ है इसको, उसमें ये जो डॉक्टर हैं उन्होंने ये बताया है, और वो जो लेडी ने जो ये बात बताई है वो मैं आपको भी वीडियो, वो ऑडियो भी सेंड कर देती हूँ। और प्लीज अपने बच्चों को नेट से, आईपैड से प्लीज दूर रखें, मोबाइल से। ये बहुत ही खतरनाक है, और ये किस तरह से इस बच्ची के दिमाग को डैमेज कर दिया है और उसकी ऐसी हालत हो गई है। तो लिहाजा ये प्लीज और भी जितनी जगह हो सके इस वीडियो को सेंड करें आप प्लीज।
तो मेरा कहने का भावार्थ है, आज हम ये जो विज्ञान के साधन, इसका हजार्ड्स को नहीं समझते हैं, सोचते हैं कि ये सब चीजें जीवन में खुशी देगी, लेकिन ये खुशी नहीं देती है। ये सबसे हम थोड़ा सा डिटेच होना जरूरी है। देखिए के पास ये साधन तो है, लेकिन हम सबसे दूर हो गए हैं, अकेले अकेले हो गए हैं, जीवन में एक रुखापन, एक सूखापन आ गया है। ये सब साधन से पहले हमारा जीवन कैसा था, हम कैसे आपस में प्रेम प्यार से बैठते थे, खेलते थे, हंसते थे, बहलते थे। हमारे घर में कोई आता था तो बैठ के दुख सुख होते थे। आजकल कोई घर में आया मेरा ये दिखाने का तात्पर्य है कि पहले जमाने में हमारे घर में कोई भी अतिथि आते थे, कुछ आते थे, हम बैठ के दुख सुख होते थे, कैसे आना हुआ, क्या हुआ। आजकल घर में कोई आते ही इडियट बॉक्स शुरू हो जाएगा, मैं भी इडियट बॉक्स देख रहा हूं, तू भी देख। हम दूर होते जा रहे हैं, जीवन में खुशी कैसे आएगी। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है जीवन में। आपको और एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, आजकल क्या हो गया देखिए। हम इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि आजकल लोग दिन रात चलाते रहते हैं। तो एक व्यक्ति को अपॉइंटमेंट किया गया है, वो व्यक्ति आपको जहां लेना चाहे ले चलेगा, और आप उसको चलाते रहोगे। आप देख लीजिए, हंस हंस के आपका पेट फट जाएगा।
In today's modern world, You can watch what you're doing, or you can watch where you're going, but you can't do both. And now, you don't have to, thanks to Guiding Hands. At Guiding Hands, we understand how important it is to stay connected when you're on the go.
आजकल पैसा देके लोग ऐसे लोगों को रखते हैं जो आपको जहां लेना चाहिए जहां करना चाहिए वो लेके
जाएंगे
और आप काम करते रहेंगे.
Let us navigate your world so you can navigate the web. Your guiding hand will take care of all the pesky distractions that once forced you to look up. We look out for you so you can keep an eye on the things that matter most. Enjoy the security that comes in knowing you are finally, truly connected.
तो मेरा कहने का भावार्थ है, हम दिन प्रतिदिन हम आपसी संबंधों से प्रेम से प्यार से दूर होते जा रहे हैं, पर्सनल रिलेशन से दूर होते जा रहे हैं. विज्ञान के साधन में हम ऐसे फंस गए हैं, आजकल के बच्चों को अगर मोबाइल एक दिन के लिए छीन लीजिएगा, देखना वो तो बिना मछली बिना पानी जैसे मछली होता है, ऐसे हालत हो जाएगी उनकी. माँ बाप लेके आते हैं यंग बच्चों को 15 साल 20 साल, कहते हैं डॉक्टर साहब इनको थोड़ा समझाओ, 24 घंटे में से 20 घंटा लगा रहता है खाना नहीं पीना नहीं पढ़ना नहीं कुछ नहीं, 24 घंटा लगा रहता है. तो प्लीज ये सब चीजों से हम दूर रहें. और लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, आप इसका सुन लीजिए.
सलाम जोधपुर, मैं हूं रेक्स आपके साथ 94.3 MyFM पर, और आज एक नई कोशिश के साथ. एक सेठ जी हुआ करते थे जिनके पास बहुत सारा पैसा था, अपने बिजनेस और अपने काम से उन्होंने बहुत सारी दौलत कमाई, कभी अपनों को टाइम नहीं दिया ना ही खुद जिंदगी जीने की कोशिश की. एक सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग यमराज आए और सेठ जी को बोले कि सेठ जी नाउ टाइम टू पैक अप. सेठ जी मुस्कुराए और यमराज को बोले कि अरे मेरे पास बहुत दौलत है यमराज जी, आप कुछ ले लो और कुछ दिनों की मोहलत मुझे दे दो. यमराज जी ने कहा आप अपना समय खराब ना करें और जल्द से चलें. सेठ जी ने कहा ठीक है 10 करोड़ रुपए ले लो, मुझे एक दिन की मोहलत दे दो. यमराज जी ने कहा नो. सेठ जी ने कहा 20 करोड़ रुपए ले लो, मुझे शाम तक की मोहलत दे दो. यमराज ने कहा आप क्यों कोशिश कर रहे हैं, आपका समय आ चुका है, आपको जाना होगा. सेठ जी ने बोला मेरी पूरी दौलत ले लो जितनी मैंने कमाई है और मुझे एक घंटे का समय दे दो. यमराज जी ने कहा नो. सेठ जी की आंखें नम हो गई और सेठ जी ने बोला कि मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए यमराज, मुझे एक खत लिखने का मौका दीजिए, एक लेटर लिखना चाहता हूं मैं. यमराज ने कहा ठीक है लिख दीजिए. उन्होंने खत लिखा और उस खत का शीर्षक यह था कि जो भी इस खत को पढ़े उस इंसान से मेरी गुजारिश है कि ये अपने आसपास अपने सोसाइटी अपने करीब रहने वाले हर इंसान को यह खत पढ़ाएं कि जिंदगी में आप चाहे कितनी भी दौलत कमा लीजिए, आप अपने लिए एक सांस भी एक्स्ट्रा नहीं कमा सकते. इसलिए हो सके तो थोड़ा सा समय अपने परिवार अपने चाहने वालों के साथ बिताइए, जीवन को थोड़ा एंजॉय कीजिए, क्योंकि जब आपका आखिरी टाइम आता है ना तो आपकी करोड़ों अरबों की दौलत भी आपको एक घंटे का समय एक्स्ट्रा नहीं दे पाती. जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, इसलिए इसे जियो दिल से. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन जो भागे पड़े हैं दौड़ रहे हैं अपनी जिंदगी में कई सारी ख्वाहिशों को पूरा करने में, थोड़ा सा जिंदगी भी जी लीजिए, क्या पता कि जिंदगी कल हो ना हो.
तो मेरा कहने का सार यही था कि हम सभी जीवन में सदा सकारात्मक जीवन जिए, तनाव से मुक्त रहें, थोड़ा सा मेडिटेशन प्रैक्टिस करें जो हमें सकारात्मक विचार मन में कैसे क्रिएट करना वो सिखाता है. आप यहां आए हो एक बहुत सुंदर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर में, खुद को भी एकदम चार्ज करिएगा. आप एक एक लाइट हाउस होकर यहां से जाइएगा. जीवन में सबको यही कला सिखाइएगा कि जीवन में सदा हम कैसे खुश रहें, सदा कैसे एक खुशनुमा जिंदगी बिताएं, यही सबसे सर्वोत्तम कला है जिसे आप हेल्थ वेल्थ ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आ जाएगी. यही मेरा विचार है. ओम शांति. थैंक यू वेरी मच.